इसीलिए भगवान पांडवों के और पांडव भगवान के, इसलिए पांडवों के जितने प्रतिरोधी प्रतिद्वंदी प्रतिकूल वो सब के सब भगवान के प्रतिकूल। या उन भगवान की बात है जो किसी के होते हैं और हो सकते हैं, जिनके कोई नहीं है उन भगवान की तो कोई बात नहीं। ऐसे भगवान भी हैं जिनके कोई नहीं है तो उनकी तो भी चर्चा होती नहीं, वो तो चर्चा से परे के भगवान हैं। और जिनकी चर्चा होती है वो हमारे भगवान, हमारे भगवान तो हमारे भगवान, हमारे भगवान पर हमारा अधिकार होता है, पर उनके लिए तो अपने भगवान अपने भगवान हैं। न लोक से मतलब, न लोक संग्रह से मतलब। और वो भी कहते हैं भगवान भी उनसे, अपने भक्त से, कि भाई तुम और हम हो, इसके सिवा और किसी लोकलाज से हमारा मतलब नहीं, तुम्हारा मतलब नहीं। तुम किसी दूसरे को देखो मत, समझो मत, मानो मत। हम दूसरे को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। हम तुम्हारे और तुम हमारे, ऐसा भक्त का नाता तो होता है। पर ऐसा होता किसका है? जो अपने को सर्वथा उनका बना देता है, भगवान उसके सर्वथा बन जाते। और अगर रहे वो तो उसी और ही नहीं है, और हम कहां होंगे, और ही नहीं। उन भक्तों के लिए तो बस एक भगवान ही है। भगवान भक्त के हो गए तो जगत रहा नहीं, और है ही नहीं, और है ही नहीं, तो औरों के भगवान कहां से होंगे। पर ये कानून बड़ा सारस्य है, रहे और वो तो हमारे हैं, हमारे रहेंगे। उन पर दावा है, भक्त का अपने भगवान पर दावा है, वो उसको पकड़े रखता है। कहां जा रहे हो, नहीं जाने देंगे। हस्तमुक्षिप जातोसि बला कृष्ण किमद भूतम हृदयाद्रियासी पौषम गणयामि थे। ये दुल्ल मंगल ने कहा, दो तो पता लगे कैसे निकलते हूँ, बांध लेते हैं भगवान के हृदय में, भगवान जा नहीं पाते। क्यों? उन भगवान पर अपना अधिकार है, और वो अधिकार किस बात को लेकर के है? हम भगवान के हो गए, भगवान हमारे हो गए। बस वही भक्त है, वही प्रेमी है जो भगवान का हो गया। कदी कदी और मदी होने साथ ही होते हैं, ये उनका हो गया, वो उनके हो गए। अब बस दोनों घुल मिल जाते हैं, फिर भेद नहीं रहता। वो इस तरह की बातें आती हैं इतिहासों में, भक्तमाल में, शास्त्रों में, भक्तों की गाथाओं में, कि भगवान भक्तों हैं, चली जाओ बांध दिया खंभे, चली जाओ जैसे खंभे से बांध दिया, पति ने और सास ने मिलके जबर को बांध दिया। ये अपने घर के काम में लग गए, और भगवान पांडुरंग एक सखी रोशन का वेश धर करके आए। पांडुरंग ने आकर कहा, सखो तुम जाना चाहती हो ना? हाँ, बोले जाना चाहती हूँ बहन। तो बोले काम करो, मैं तो तुम सरखी लगती हूँ, ठीक उसी रूप में आ गए। हाँ, बोले लगती तो मेरे जैसी हो, तो मैं बहुत बार हो आई हूँ पंडरपुर, मैं सब सब देख ही आई हूँ, मुझे देखना नहीं है। तो तू एक बात मान लो मेरी, बोले क्या? क्या मैं बंध जाऊं और तू चली जा? उसने कहा, बहन ये कैसे हो सकता है, भला मेरे बदले में तू बंध जा, तू बंधी रहे और मैं जाऊं। तो मैंने मुझे बड़ा आग्रह था, और इधर से कुछ चोर ना मिली, इन्होंने बंधन खोला, वो खुलकर उनको बांध दिया। भगवान सखू भाई बंध के खंभे, बंध के खंभे से बंध गए, और ये अपना चली गई। वहां जाकर के भगवान के दर्शन किए कराए। इधर क्या हुआ, 15 दिन बीत गए। जब 15 दिन बीते तो ये खाने पीने के सुचारू को दे नहीं, भगवान को खाने पीने को नहीं मिले। यहां पर सफेद डाली बहु बने बहे खाने पीने के लिए रोज 10-20 डाली आगे सुना जाए साथ, दो चार चोट लगा जाए पति, ये दशा बने रहे तो दशा बड़ी क्षीण हो गई, गांव में बदनामी होगी। तो उसके पति के मन में आया कि जरा खोल दे। पति ने कहा अपनी मास है, इतने दिन इसको बगे हुए भूखों मर रही है, कहीं मर वर गई तो आफत होगी। और अब तो बस यही मालूम होती है, मालूम होता है कि ये बगने से इसको शिक्षा मिलेगी, सब ठीक हो जाएगा। इसने आके माँ की आज्ञा से खोल दिया। अब माँ ने काम बताया, बरसई बना बचन नाच, कपड़े धो के ला, नदी से पानी ला, जो कहे वो तैयार काम सारा का सारा, खाने को माया नहीं, सारा काम दिन भर का करवा लिया, तब सूखी रोटी खाने को दी, भगवान ने बड़े मजे में खा ली। दिन भर काम करे, रात को पति के पैर दबावे, सास के पैर दबावे, पानी भर के लावे, बर्तन मांगे, जूठे बर्तन मांगे, घर भर में झाड़ू लगावे, रसोई बनावे, चक्की पीसे, कुकर में धान कूटे, अनाम दस्ते में कुल मसाला कूटे, सारा काम दिन भर ये करे, बड़ी अच्छी उनको मजदूरी मिल गई। बोले सखी तो बड़ी अच्छी हो गई, अब सास भी राजी है, पति भी राजी, ऐसी अच्छी तो कभी थी नहीं, ये तो बड़ी अच्छी होगी। अब सब किसी बड़ा उससे स्नेह करने लगे, परंतु क्या उनका संस्पर्श मिल गया ना ब्रह्म का सब। उधर क्या हुआ, सखू भगवान के दर्शन कर रही थी, प्रेम उपजा और सखू के मन में कुछ भाव आया, भाव आते ही और सखू धराम से गिर पड़ी और मर गई। तो गांव के ब्राह्मणों ने आसपास के थे, देखा कि मर गई है सखू, उसको ले जाकर के नदी किनारे जला दिया, ये जल गई। उधर भगवान सखू के रूप में वहां रुक्मिणी जी ने देखा कि ये बड़ी आफत है, ये जल गई और वो यहां पर सखू बने बैठे, तो हमारा तो घर खाली हो गया। रुक्मिणी सोचा तो उपाय था कि रुक्मिणी जी नदी तट पर गई, उसकी हड्डियों को अस्थियों को बटेरा, अमृत वर्षा की, वो जीवित हो गई। उसने कहा कि अब तो तुझा तेरा ये पंथ था ना कि शरीर से आंखें नहीं जाना है, उसे ये जा जिसे जा गया, अब तुझा तू सखू लौट कर घर गई। तो ये पानी भरने आ रहे थे, दूसरी सखू रास्ते में सखू से सखू दोनों इस सखू ने कहा कि देख, मैंने तो सारा काम ठीक ठिकाने से किया है और अब सासुर बहुत राजी है, पति बहुत राजी है, पति और मैं आ गई। तो बोले ये बंधा कौन, तुम्हारे बदले बंधा कौन, फिर बात सारी खुल गई। सखू ने कहा कि तुम लोगों का सौभाग्य था, तुमने उनको देखा, फिर तो वो सखू घर की देवता हो गई, उसका मान सम्मान इतना बढ़ गया कि ठिकाना नहीं, और ससुर और सास और पति सब भक्त बन गए। तो मैं ये कह रहा था कि भगवान इतने अपने हो जाते हैं कहीं कहीं कि उसके बदले में बढ़ जाते हैं और अपना सब व्यापी पना भूल करके रह जाते वहीं पर, रुक्मिणी जी को भी नहीं देखते, इतने भक्त के बन जाते हैं। तो हम भक्त के बन जाए, भगवान के बन जाए, तो भगवान हमारे बन जाए। टाइम हो गया।
नारायण 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 है तो भगवान कोई स्वरूप है, इस प्रकार से ज्ञानवान जो है मुझको बचता है, मेरे स्वरूप को अनुभव करता है और वह महात्मा है, वो अति दुर्लभ महात्मा है। तो इसे ना सबसे भगवान को स्वरूप है, देखो ख्याल कर करके कि एक भगवान के स्व दूसरी वस्तु है ही नहीं। हवा आती है तो भगवान हवा के रूप में आपने सब बह रहे हैं, तो भगवान को शांतिमय आनंदमय जो अलौकिक जो स्वरूप है, तो वही एक प्रकार से हवा के रूप के वहाँ आकर के प्रत्यक्ष हो रहे हैं। तो भगवान ही एक हवा को रूप धारण किया है। इसी तरह से ये जो कुछ आकार दिख है तो भगवान को स्वरूप है। भगवान को संकल्प होने से सब भगवान को स्वरूप है। भगवान इस रूप में खुद ही तो प्रकट हुआ है। जैसे स्वप्न के बीच के मन जो संसार दिख है वो अपना ही संकल्प है, तो अपना संकल्प होने से अपना स्वरूप ही हो। तो इस प्रकार से ये जो संसार है जिसको भगवान को संकल्प होने से भगवान को स्वरूप है। बस इस तरह से
समझना, फिर भगवान के सिवा और क्या रह जाए, सब भगवान ही भगवान है। तो इस तरह से सब मैं भगवत बुद्धि करके हर भगत आनंद के माँ अपने मुग्ध हो जावे। अब उसके आनंद को क्या ठिकाना है कि जो हर भक्ति भगवान को स्वरूप देखे, अब भगवान ने भूले कैसे, जब सभी भगवान है, जो भी कुछ दिखे सब भगवान, जो भी कुछ मन में ध्यान में आवे सब भगवान। तो इस तरह से भगवान उनको दर्शन करके मुग्ध हुए। तो अन्य जानती असी मति न तेरा हनुमन, मैं सेव सतरा तेरे रूप राशि भगवान। भगवान इस चिंता कारण में हनुमान को कहते हैं कि हे हनुमान, वे मेरा अनंत भक्त है। कौन? जैसी बुद्धि इस सिद्धांत से कभी करती नहीं। क्या सिद्धांत? कि चराचर सब कुछ भगवान को स्वरूप है और मैं उनको सेवक हूँ। सब ऐसे साक्षात परमात्मा को भगवान को स्वरूप है, सब हमारे स्वामी, मैं उनको सेवक। जब सभी भगवान को स्वरूप है तो फिर भूले कैसे? सब मैं भगवान देखे वो भी नहीं भूले। यो मंग पश्यति सर्वत्र सर्वंत्यमयी पश्यति कश्चन न प्रणश्यामि सतमेव न प्रणश्यति। जो मुझ परमात्मा को सब तक देखता है, सब में देखता है, सबको मुझ में देखता है, उससे मैं कभी अलग नहीं, वो मेरे से कभी अलग नहीं, वो मुझको देखता रहता है, मैं उसको देखता रहता हूँ। तो इस तरह से थी भगवान का सब तरफ दर्शन करके क्षण क्षण के बीच के मन को मुग्ध हुए। भगवान से यह बात कही जाएगी, प्रभु आप हमारे पर दया करो। तो इस बात को सुनकर भगवान हंसे कि देखो मेरी तो पूर्ण दया हो रही है और कोई कमी नहीं है, तो मैं और क्या दया करूं। इसको एक प्रकार से दया नहीं दिखती है तो बालक है, तो ये अनुभव करना चाहिए। और नहीं दिखे तो मान लेनी चाहिए कि भगवान की दया हमारे ऊपर है। तो जब मान लेता है तो आगे फिर जान जाता है उस दया को, और जान जाता है तो फिर जानने अनुभव करना है, अनुभव होना है। तो इस तरह से कि अपने समझ लेने पर भगवान उसके दृष्टि से कभी दूर नहीं होते। नीचे ऊपर बाहर भीतर सब जगह स्वयं भगवान एकदम परिपूर्ण हो रहे हैं। यह बात भी ठीक है, सब संसार ने यदि प्रकृति को कार्य देखे तब तो संसार के माँ भगवान व्यापक हो रहे हैं और सारी संसार भगवान के संकल्प में है। और यदि यह समझे कि सब भगवान को संकल्प होने से भगवान को स्वरूप ही है, तो फिर सब भगवान को स्वरूप ही है, उससे फिर भगवान अलग कैसे हो सके और वो भगवान से रहित कैसे रह सके। बस हर वक्त इस तरह से भगवान का दर्शन करते हैं, मन से और भाषण है, वार्तालाप चिंतन, ये सब एक समझो कि अमृत स्वरूप ही है, अनु स्वरूप ही है, ज्ञान स्वरूप ही है, प्रेम स्वरूप है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण
देखे तो ऐसे स्वरूप को हर वो देखता ही रहे और दिन जाए बल्कि अलौकिक शांति से फिर वो बुझा ही नहीं सके बल्कि छोड़ ही नहीं सके तो भगवान की प्राप्ति इतनी सुगम है। एक समझने की बात है, विश्वास करने की बात है, फिर पहला तो मानना पड़े और फिर भगवान प्रत्यक्ष के वहां से प्रकट हो जाए। और देखो एक प्रकार से भगवान की अद्भुत कितनी भरिया है, प्रेम है, कितना तो प्रेम है और हर वक्त उनके की शांति आनंद प्रेम परिपूर्ण हो।
यदि साधक को असाधन से बचना है अथवा अपने जीवन में से असाधन का त्याग करना है तो उसे साधन सामग्री को अपनी भोग्य वस्तु नहीं बनाना चाहिए। साधन सामग्री को भोग्य वस्तु बना लेना असाधन को स्वीकार करना है। असाधन और कुछ नहीं है, साधन सामग्री को भोग्य वस्तु बना लो असाधन हो गए और असाधन से असिद्धि और साधन से सिद्धि। तो साधन सामग्री जो कुछ है वो साध्य प्राप्ति में हेतु है। साधन साधन सामग्री कहते हैं उसको जिससे साध्य मिल जाए, कब जब उसका सदुपयोग करें तब। अगर हम साधन सामग्री का सदुपयोग नहीं करेंगे तो साध्य की प्राप्ति नहीं होगी। अच्छा अब कोई ये कहे कि अच्छा भाई जो कुछ भी हमारे पास साधन सामग्री है वो हमारी नहीं है, वो तो साध्य की ही वस्तु है। जो भी हमारे पास साधन सामग्री है वो साध्य की दी ही है। तो साधन किस लिए दी है? साधन करने के लिए। तो साध्य की दी हम साध्य की ही साध्य की दी ही साधन सामग्री को हम अपनी न मानकर साध्य ही की माने ये भी बहुत बड़ा साधन हो जाएगा। आज अगर हमें ये विश्वास हो जाए कि हाथ हमारा नहीं है, ये हमारे पास जो इंद्रियां हैं वो हमारी नहीं है, हमारे पास जो प्राण है वो हमारे नहीं है, हमारे पास जो मन है वो हमारा नहीं है, हमारे पास जो बुद्धि है वो हमारी नहीं है, ऐसा अगर हम और आप स्वीकार करेंगे तो कितना बड़ा साधन हो गया। और अगर हमने ये मान लिया कि शरीर हमारा है, इंद्रियां हमारी है, प्राण हमारे है, मन हमारा है, बुद्धि हमारी है, अगर ऐसा मान लिया तो फिर हमारी किस लिए है? कोई कहेगा हमारी इसलिए है कि हम इनके साथ इनके द्वारा अपने सुख का संपादन करेंगे, सुख का भोग करेंगे। तो साधन सामग्री को सुख भोग की सामग्री बनाना असाधन है और साधन सामग्री को साध्य की प्राप्ति का हेतु मानना ये साधन है। तो ये जो साधन सामग्री है ये हमारी स्वतंत्र उत्पन्न की ही है अथवा हमें किसी से प्राप्त हुई है, ये तो दूसरी बात है कि जिसने हमें ये साधन सामग्री दी है उसे हम जानते नहीं है। अगर हमें उसका ज्ञान होता तब तो साधन करने में की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि साध्य की प्राप्ति के लिए साध्य का ज्ञान जिसका होता है उसकी प्राप्ति हो जाती है। ये बात बिल्कुल गलत है कि कहीं कहीं हम चीज को जानते हैं और हमें प्राप्त नहीं है। जिसका ज्ञान होता है उसकी प्राप्ति कैसे होती है? किसे ज्ञान होता है? और जिसका ज्ञान नहीं होता है वो अप्राप्त भी मालूम होता है। जैसे मैं कल्पना करो आप कोई अपनी रखी हुई वस्तु भूल गए हैं, तो जिस वक्त वस्तु भूल रहे हैं उस वक्त वस्तु आपको अप्राप्त मालूम होती है, प्राप्त नहीं मालूम होती। तो ये नियम है कि जिसका हमें ज्ञान होगा वो हमें अप्राप्त नहीं होगा। ज्ञान होगा, मानना अलग चीज है, विश्वास अलग चीज है। ज्ञान जैसे ज्ञान प्राप्ति को सिद्ध करता है, विश्वास संबंध को। बहुत गंभीरता से सोचो। हाँ, आप उसी को जानेंगे जो प्राप्त है, नहीं तो मान लेंगे। जैसे आप लंदन को मान सकते हैं कि लंदन है, लेकिन जान नहीं सकते, उसके संबंध में सुन सकते हैं, उसको उस पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान तो नहीं है वो। आम का नहीं, आप विचार करो, जिसका ज्ञान होता है उसकी अप्राप्ति नहीं होती, और जिसकी अप्राप्ति होती है उसका ज्ञान भी नहीं होता। प्रतीति होती है विषयों की, विषय प्राप्त कर होते हैं। क्या कह रहे हैं, भूल गया। हाँ, जिसका ज्ञान होगा उसकी प्राप्ति भी सिद्ध होगी, और जिसकी प्राप्ति सिद्ध नहीं होगी उसका ज्ञान भी सिद्ध नहीं होगा, और जिसमें विश्वास होगा उसके संबंध भी सिद्ध होगा, और जिसमें विश्वास नहीं होगा उसे संबंध भी सिद्ध नहीं होगा, और जिससे संबंध होगा उसकी स्मृति भी होगी। इसलिए विश्वास संबंध और स्मृति को जन्म देता है और ज्ञान प्राप्ति को सिद्ध करता है। तो साधक को जो साधन सामग्री प्राप्त है वो उसकी भोग्य वस्तु नहीं है, और जो भोग्य वस्तु नहीं है उसके उपयोग में अधिकार रहता है, उसकी ममता में अधिकार नहीं है। तो साधन सामग्री हमारी अपनी नहीं है, किसी की दी हुई है, और जिसकी दी हुई है उसे हम जानते नहीं हैं, किंतु मानते हैं। एक तो ये साधन का क्रम है, ये हाथ हमारा हाथ नहीं है, ये किसी का दिया हुआ है, और जिसका दिया हुआ है